आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
कल्पना कीजिए एक ऐसे बास्केटबॉल मैच की जहां ना एक 7 फुट लंबा दिग्गज खिलाड़ी बास्केट के बिल्कुल ठीक नीचे खड़ा है।
हाँ।
मतलब वो स्कोर करने के लिए पूरी तरह तैयार है,
बिल्कुल,
लेकिन वो शॉट ले ही नहीं सकता,
और वो भी तब जब कोई उसे छू तक नहीं रहा है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे शारीरिक रूप से रोक रखा है या कोई उसके ऊपर कूद रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने महज 5.5 फुट का एक खिलाड़ी एक खास पोजीशन में खड़ा है।
सही कहा, उस छोटे खिलाड़ी ने ना बिना छुए उस 7 फुट के खिलाड़ी की ताकत और जो इसकी लंबाई का फायदा था उसे गणितीय रूप से पूरी तरह जीरो कर दिया है।
मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना?
बिल्कुल।
लेकिन आज हमारी टेबल पर जो ये दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और स्पोर्ट्स रूल बुक्स का स्टैक मौजूद है, ये एक बिल्कुल असली खेल के बारे में है।
एकदम असली और बहुत ही दिलचस्प भी।
तो आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हम एक ऐसे अनोखे खेल को समझने वाले हैं जिसका डिजाइन किसी पुराने ढरे पर नहीं चलता। आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिजाइन किया गया है।
बिल्कुल। और इस खेल का नाम है कॉर्फ बॉल, जो नीदरलैंड से शुरू हुआ था।
हाँ, कॉर्फ बॉल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इस खेल ने बास्केटबॉल, नेटबॉल और हैंडबॉल के तत्वों को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जहां समानता केवल एक आदर्श नहीं है बल्कि जीतने की इकलौती शर्त है।
देखिए, इस टैग को खंगालते हुए ना जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि हमारे ज्यादातर जो पारंपरिक खेल होते हैं उनका मूल डिजाइन हीरो पैदा करने पर टिका होता है।
मतलब जो सबसे ताकतवर है।
हाँ, जो शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर है, सबसे तेज भागता है या जो सबसे ऊंची छलांग लगा सकता है वो पूरे मैच पर हावी हो जाता है।
सही बात है।
लेकिन कॉर्फबॉल के दस्तावेजों का जब हम तकनीकी विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इसके डिजाइनरों ने जानबूझकर ऐसे नियम गढ़े हैं जो एथलेटिसिज्म से ज्यादा बुद्धिमता, स्पेस क्रिएशन और टीम के पूरे सहयोग को अनिवार्य बना देते हैं।
वाओ।
ये खेल ना इस धारणा को ही पलट देता है कि जीतने के लिए बाहुबल की जरूरत है।
और इस समानता की शुरुआत इसके सबसे बुनियादी स्तर से ही हो जाती है। मतलब ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा मुख्य धारा का खेल है जहां पुरुष और महिलाएं एक ही टीम में एक साथ और बिल्कुल बराबर की हैसियत से खेलते हैं।
कोई अलग अलग लीग नहीं होती इसमें।
हाँ, कोई अलग लीग नहीं, कोई अलग नियम नहीं। तो चलिए इस रिसर्च स्टैक के पहले हिस्से को खोलते हैं और इसके कोर्ट की जमीनी हकीकत को समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी खेल की आत्मा उसके मैदान की बनावट में ही छिपी होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
मैंने पढ़ा कि इसका मैदान 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है जिसे बीच से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अटैक जोन और डिफेंस जोन। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई ना वो है इसका गोल पोस्ट।
डच भाषा में उस गोल पोस्ट को कॉर्फ कहा जाता है।
अच्छा।
हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ बास्केट ही होता है। ये ना 3.5 मीटर ऊंचे एक पोल पर टिका होता है और पीले रंग के सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। ये एक बिना तले का यानी बॉटमलेस सिलेंडर होता है। लेकिन पारंपरिक बास्केटबॉल से अगर हम इसकी तुलना करें तो सबसे बड़ा ढांचा का तंत्र ये है कि इसमें कोई बैकबोर्ड होता ही नहीं है।
इस बात पर थोड़ा रुकते हैं। बैकबोर्ड न होने का मतलब है कि खिलाड़ियों के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
बास्केटबॉल में तो खिलाड़ी अक्सर बोर्ड पर बॉल मारकर उसे बास्केट में धकेलने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मिस होने पर बॉल टकराकर वापस भी आ जाती है रिबाउंड के लिए।
हाँ, वो फायदा यहाँ नहीं मिलता।
यहाँ तो अगर निशाना जरा सा भी चूका तो बॉल सीधे बाहर। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मुझे इन रूल बुक्स में दिखी वो ये है कि ये पोल मैदान के बिल्कुल किनारे या बैकलाइन पर गड़ा ही नहीं होता।
हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
ये बैकलाइन से करीब 6.6 मीटर अंदर कोर्ट के बीच में होता है।
और ये जो 6.6 मीटर का फासला है ना, ये इस खेल की पूरी ज्यामिति यानी पूरी ज्योमेट्री को बदल कर रख देता है।
वो कैसे?
देखिए, चूंकि पोल कोर्ट के अंदर है और उसके पीछे कोई बैकबोर्ड नहीं है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि खिलाड़ी बास्केट के चारों ओर से मतलब पूरे 360 डिग्री से गोल कर सकते हैं।
बापरे, ये बात तो खिलाड़ियों की स्थानिक समझ यानी जो उनकी स्पेशल अवेयरनेस है उसको एक अलग ही स्तर पर ले जाती है।
बिल्कुल ले जाती है।
मतलब बास्केटबॉल में डिफेंडर्स को पता होता है कि हमला हमेशा सामने से होगा या साइड से होगा, क्योंकि पीछे तो खंबा और बोर्ड है।
सही कहा।
लेकिन कॉर्फ बॉल में बॉल बास्केट के पीछे से भी आ सकती है। आपको कोर्ट पर अपनी जगह, दिशा और हर कोण को 3D में समझना पड़ता है।
एकदम सही। ये एक रैखिक या लीनियर अटैक के बजाय पूरी तरह से एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर अटैक बन जाता है। और इसी सर्कुलर अटैक को संभालने के लिए टीम का जो संतुलन बनाया गया ना, वो भी बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है।
तो टीम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें?
एक टीम में कुल 8 खिलाड़ी होते हैं, 4 पुरुष और 4 महिलाएं। खेल की शुरुआत में 2 पुरुष और 2 महिलाएं अटैक जोन में तैनात होते हैं और बाकी बचे 2 पुरुष और 2 महिलाएं डिफेंस जोन में।
अच्छा, अब अगर कोई सोचे कि केवल पुरुष और महिलाओं को एक साथ मैदान पर उतार देने से समानता आ जाती है, तो मुझे लगता है वो गलत है।
हाँ, वो सिर्फ ऊपरी दिखावा होगा।
बिल्कुल, समानता थोपी नहीं जा सकती, उसे सिस्टम के अंदर पिरोना पड़ता है। और यहीं से इन दस्तावेजों का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने मुझे सच में चकित कर दिया।
आप उस जोन वाले नियम की बात कर रही है ना?
हाँ, जो खिलाड़ी अटैक जोन में है वो सेंटर लाइन पार करके डिफेंस में नहीं जा सकते, और जो डिफेंस में है वो अटैक में नहीं जा सकते, मतलब वो अपने हाफ में ही कैद है।
देखिए, ये नियम शुरुआत में बहुत कड़ा और अजीब लगता है।
लगता तो है,
लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खेल तब शुरू होता है जब इसमें 2 गोल वाला बड़ा ट्विस्ट लागू होता है।
ये ट्विस्ट बहुत मजेदार है।
मैच में जैसे ही कोई भी टीम 2 गोल कर लेती है, चाहे वो आपकी टीम हो या विरोधी टीम, खिलाड़ियों को तुरंत अपनी भूमिका और अपना जोन बदलना पड़ता है।
मतलब ये वाला नियम तो किसी भी स्टार कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकता है।
बिल्कुल।
अगर हम इसकी तुलना फुटबॉल से करें तो सोचिए कि किसी मैच में मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे किसी स्टार स्ट्राइकर से कहा जाए कि भाई हर 10 मिनट बाद तुम्हें सेंटर बैक डिफेंडर की तरह खेलना पड़ेगा।
हाँ, और उन्हें वो करना ही पड़ेगा।
जो खिलाड़ी अभी अभी अपनी टीम के लिए गोल बचाने के लिए जान लगा रहे थे, वे अचानक सेंटर लाइन पार करके अटैकर बन जाते हैं। ये तो कमाल है।
इस डिजाइन के पीछे की सोच को समझना बहुत जरूरी है। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप किसी कमजोर डिफेंडर को अटैक में छिपा कर नहीं रख सकते, और ना ही किसी बेहतरीन शूटर को सिर्फ स्कोरिंग के लिए आगे खड़ा रख सकते हैं।
सही बात है।
हर खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से अटैक और डिफेंस दोनों के कौशल विकसित करने ही पड़ेंगे। ये उस मानसिकता को तोड़ता है जहां कोई एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिता सकता है।
तो मतलब कॉर्फबॉल में एक टीम की ताकत उसके सबसे कमजोर खिलाड़ी की बहुमुखी प्रतिभा से तय होती है।
एकदम सही पकड़ा आपने।
लेकिन जब मैं ये नियम पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल अटका। मान लीजिए अगर कोई बहुत ही तेज दौड़ने वाला एथलीट है, तो क्या वो अपनी शारीरिक रफ्तार का फायदा नहीं उठा सकता? मतलब वो बॉल लेकर तेजी से भागेगा और स्कोर कर देगा। लेकिन जब मैंने इसके मूवमेंट वाले सेक्शन को पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि डिजाइनरों ने तो इस रास्ते को भी पूरी तरह बंद कर रखा है।
हाँ, क्योंकि इसमें बॉल लेकर दौड़ना सख्त मना है।
बिल्कुल।
खेल की गतिशीलता को नियंत्रित करने का ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही खिलाड़ी बॉल पकड़ता है, उसे तुरंत वहीं रुकना होता है। वो केवल एक पैर पर धुरी बनाकर यानी पिविट करके घूम सकता है।
एक मिनट, अगर खिलाड़ी दौड़ नहीं सकता, तो क्या वो बास्केटबॉल की तरह ड्रिबल करके आगे बढ़ सकता है?
जी नहीं, इन नियमों में ड्रिबलिंग की कोई जगह ही नहीं है।
क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, यहाँ तक कि सोलो प्ले भी पूरी तरह से वर्जित है। आप बॉल को हवा में उछाल कर खुद आगे दौड़कर उसे वापस कैच भी नहीं कर सकते।
तो अगर मैं कोर्ट पर हूँ और मेरे हाथ में बॉल है, मैं भाग नहीं सकती, मैं ड्रिबल नहीं कर सकती, मैं खुद को पास नहीं दे सकती,
नहीं,
तो मैं तो एक तरह से मूर्ति बन गई।
आगे बढ़ने का इकलौता तरीका यही बचा कि मैं अपनी टीम के किसी साथी को पास दूं।
बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि आप चाहकर भी अकेले हीरो नहीं बन सकते, आपको हर हाल में अपनी टीम पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। टीम वर्क ही सब कुछ है यहाँ।
और इसी निर्भरता को और मजबूत करने के लिए जो मिक्स्ड जेंडर मार्किंग का नियम जोड़ा गया है ना, वो शारीरिक बनावट के अंतर से मिलने वाले अनुचित लाभ को ही खत्म कर देता है।
वो कैसे काम करता है?
नियम बहुत स्पष्ट है। एक पुरुष खिलाड़ी केवल पुरुष खिलाड़ी को ही मार्क कर सकता है, और एक महिला खिलाड़ी केवल महिला खिलाड़ी को ही डिफेंड कर सकती है।
और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि आप विरोधी जेंडर के खिलाड़ी के बॉल पकड़ने या फेंकने में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं कर सकते।
मतलब अगर एक महिला खिलाड़ी शॉट ले रही है, तो पुरुष खिलाड़ी बीच में आकर ब्लॉक नहीं कर सकता।
हाँ, ये सख्त मना है।
इसके साथ ही ये पूरी तरह से एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। धक्का देना, पकड़ना या हाथ से बॉल छीनना तक फाउल है। आप बॉल को पैर या मुक्के से भी नहीं मार सकते।
ये जो नॉन कॉन्टैक्ट पहलू है ना, ये खिलाड़ियों को शारीरिक टकराव के बजाय रणनीतिक पोजिशनिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर देता है। आपको विरोधी को छूना नहीं है, बस उसकी जगह को ब्लॉक करना है।
लेकिन देखिए, यहीं पर इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मैं सबसे ज्यादा उलझ गई थी।
अच्छा, क्या उलझन हुई?
यहां मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप नजर आ रहा था। जरा सोचिए, मैं कोर्ट पर हूं, मैं बॉल को लेकर ड्रिबल नहीं कर सकती।
हाँ।
मैं विरोधी को छू नहीं सकती, उसके हाथ से बॉल छीन नहीं सकती। मैं सिर्फ अपनी ही जगह पर खड़ा होकर पास दे सकती हूँ, तो मैं विरोधी टीम को स्कोर करने से रोकूंगी कैसे?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है। विरोधी टीम तो आराम से बास्केट के पास जाएगी, एक दूसरे को पास देगी और गोल कर देगी। ये तो महज एक ही जगह खड़े रहकर पास करने की कोई बोरिंग सी ड्रिल बन जानी चाहिए थी।
ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और यहीं पर कॉर्फबॉल के डिजाइन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। आपके सवाल का सीधा जवाब है डिफेंडेड शॉट्स का नियम।
हाँ, वो डिफेंडेड शॉट,
एंडेड शॉट नियम। सच कहूं तो जब मैंने इसे समझा तो मेरा सच में दिमाग हिल गया था।
कमाल का नियम है ये।
मतलब अगर मैं अटैकर हूं और मैंने बॉल फेंक दी और वो बॉल बास्केट के अंदर भी चली गई, लेकिन अगर वो शॉट डिफेंडेड था तो वो गोल माना ही नहीं जाएगा। रेफरी सिटी बजा देगा और बॉल विरोधी टीम को मिल जाएगी।
बिल्कुल, ये नियम ये तय करता है कि अगर कोई विरोधी खिलाड़ी आपको सही तरीके से डिफेंड कर रहा है तो आप शॉट ले ही नहीं सकते। और ये सही तरीके से डिफेंड करना कोई हवा हवाई बात नहीं है। रेफरी के लिए इसके चार बहुत ही स्पष्ट और सख्त मापदंड तय किए गए हैं। एक शॉट को तभी डिफेंडेड माना जाएगा जब ये चारों शर्तें एक ही समय पर एक साथ पूरी हो।
तो अगर मैं एक डिफेंडर हूँ और मुझे किसी अटैकर का शॉट टर्न ऑफ करना है तो मुझे क्या करना होगा?
पहली शर्त, डिफेंडर को अटैकर और बास्केट के बिल्कुल बीच में खड़ा होना चाहिए, मतलब वो लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर रहा हो।
ठीक है, बीच में खड़ा होना है।
दूसरी शर्त, डिफेंडर को अटैकर से एक हाथ की दूरी के भीतर यानी आर्म्स लेंथ में होना चाहिए। वो दूर खड़ा रहकर बस हाथ नहीं हिला सकता।
ओके, आर्म्स लेंथ।
तीसरी शर्त, डिफेंडर का चेहरा अटैकर की ओर होना चाहिए। और चौथी और आखिरी शर्त, डिफेंडर सक्रिय रूप से बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि उसने अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ हो।
ये तो बिल्कुल शतरंज के चेकमेट जैसा हो गया।
हाँ, एकदम।
आपको विरोधी राजा पर शारीरिक रूप से हमला करने की या उसे बोर्ड से बाहर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपके मोहरे को बिल्कुल सही पोजीशन पर होना चाहिए।
सही पकड़ा आपने।
अगर एक डिफेंडर बिना छुए महज एक हाथ की दूरी पर इन चारों शर्तों को पूरा करते हुए सही जगह खड़ा हो गया तो उसने अटैकर की स्कोर करने की क्षमता का स्विच ही बंद कर दिया।
और इस नियम का जो प्रभाव कोर्ट पर पड़ता है ना, वो सच में अभूतपूर्व है। हमने शुरुआत में जिस 7 फुट के खिलाड़ी का उदाहरण दिया था, ये नियम उसी पर लागू होता है।
हाँ, बिल्कुल।
बास्केटबॉल में अगर एक खिलाड़ी 7 फुट का है और डिफेंडर 5.5 फुट का है, तो 7 फुट वाला खिलाड़ी आसानी से उसके सिर के ऊपर से जंप करके बॉल डाल देगा। उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि डिफेंडर उसके सामने खड़ा है।
लेकिन कॉर्फ बॉल में उस लंबाई या जो शारीरिक ताकत है, उसका गुब्बारा वहीं फूट जाता है।
एकदम।
अगर वो 5.5 फुट का डिफेंडर उन चारों शर्तों को पूरा करते हुए सामने खड़ा है तो वो 7 फुट का अटैकर शॉट ले ही नहीं सकता। अगर वो ताकत के दम पर शॉट लेता भी है तो वो फाउल माना जाएगा।
हाँ, और बॉल छिन जाएगी।
ये नियम शारीरिक शिष्टता को पूरी तरह से बेअसर कर देता है।
और यही वो बिंदु है जो अटैकर्स को ओपन स्पेस यानी खाली जगह बनाने के लिए मजबूर करता है। आप एक जगह खड़े रहकर स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास बॉल आने के बाद आप ड्रिबल नहीं कर सकते, इसलिए आपको बॉल मिलने से पहले ही डिफेंडर से आर्म्स लेंथ की दूरी बनानी होगी।
मतलब ये पूरा का पूरा खेल स्पेस क्रिएशन की कला पर टिका हुआ है।
बिल्कुल टिका है।
अटैकर को लगातार तेजी से भागना होगा, दिशा बदलनी होगी, अपनी टीम के साथियों के साथ मिलकर ऐसी चालें चलनी होंगी कि डिफेंडर एक सेकंड के लिए भी चकमा खा जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए।
सही कहा।
जैसे ही वो डिफेंडर एक हाथ की दूरी से थोड़ा सा भी दूर हुआ, वो एक क्लीन शॉट बन जाता है। बिना दौड़े, बिना ड्रिबलिंग के, सिर्फ पासिंग और मूवमेंट के जरिए डिफेंडर को छकाना, ये शारीरिक खेल कम और दिमागी खेल ज्यादा लगता है।
हाँ, ये एक तरह का फिजिकल चेस है। लेकिन देखिए, जब पोजीशनिंग की अहमियत इतनी ज्यादा हो और खेल पूरी तरह नॉन कॉन्टैक्ट हो, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर कोई खिलाड़ी इन सख्त नियमों को तोड़ता है तो रेफरी बिना खेल का मजा किरकिराए उसे कैसे संभालते हैं?
हाँ, क्योंकि अगर कोई बार बार डिफेंडेड शॉट ले रहा है या बॉल लेके चल रहा है तो उसे रोकना भी तो जरूरी है।
बिल्कुल, तो फाउल और पेनल्टी का जो सिस्टम है ना वो भी इसी निर्बाध प्रवाह यानी फ्लो को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
रिसर्च के अनुसार यहाँ फाउल को बहुत ही तकनीकी ढंग से निपटाया जाता है। मैंने पढ़ा कि मामूली गलतियों के लिए रेफरी रीस्टार्ट देता है।
हाँ, रीस्टार्ट में बॉल उसी जगह से विरोधी टीम को दे दी जाती है और इसमें विरोधी खिलाड़ी पास फेंकने वाले के बिल्कुल करीब भी खड़े हो सकते हैं।
अच्छा,
लेकिन अगर कोई गंभीर नॉन फिजिकल फाउल होता है या मामूली गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं तो फ्री पास दिया जाता है।
और ये फ्री पास का नियम भी स्पेस क्रिएशन के सिद्धांत पर ही काम करता है।
वो कैसे?
ये पास पोल से 2.5 मीटर दूर एक खास पेनाल्टी स्पॉट से लिया जाता है और मजेदार बात ये है कि पास फेंकने वाले खिलाड़ी को छोड़कर मैदान के बाकी सभी खिलाड़ियों को, चाहे वे किसी भी टीम के हों, कम से कम 2.5 मीटर दूर खड़ा होना पड़ता है। ये तो एक तरह का आइसोलेशन बबल बना देता है ताकि पास फेंकने वाले को रणनीति बनाने के लिए एक खुली जगह मिल सके।
बिल्कुल।
और अगर बात इससे भी आगे बढ़ जाए, यानी कोई डिफेंडर जानबूझकर कोई ऐसा फाउल करे जिससे विरोधी टीम का सीधा स्कोरिंग मौका खराब हो जाए, तो फिर सीधे पेनाल्टी दी जाती है
जो कि बास्केट पर सीधा शॉट होता है,
और ये भी उसी 2.5 मीटर वाले स्पॉट से लिया जाता है। इस दौरान भी बाकी सभी खिलाड़ियों को दूर रहना होता है जब तक के बॉल खिलाड़ी के हाथ से छूट ना जाए। और इन सब के बीच जो चीज इस खेल को बांधे रखती है वो है इसका समय प्रबंधन।
समय का क्या नियम है इसमें?
25-25 मिनट के दो हाफ होते हैं, लेकिन ये 25 मिनट असल खेलने का समय होता है। जब भी बॉल बाहर जाती है या रेफरी की सीटी बजती है तो घड़ी रोक दी जाती है, मतलब आप समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं उठा सकते।
ये बहुत स्मार्ट डिजाइन है। घड़ी रोकने का ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि मैच की जो इंटेंसिटी है वो कभी कम ना हो। खिलाड़ियों को पूरे 50 मिनट तक शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह चुस्त रहना पड़ता है।
तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और नियमों को एक साथ जोड़ के देखें तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कॉर्फबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये बेहतरीन सिस्टम डिजाइन का एक जीता जागता उदाहरण है। बास्केट का कोर्ट के अंदर होना, बिना बैकबोर्ड का डिजाइन, हर दो गोल के बाद जोन का बदल जाना, बॉल लेकर दौड़ने पर पाबंदी, मिक्स जेंडर मार्किंग और इन सबसे ऊपर वो डिफेंडेड शॉट का मास्टर स्ट्रोक।
देखिए, इन सभी नियमों को अगर हम अलग अलग देखें ना तो ये महज पाबंदियां लग सकती हैं।
हाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं,
लेकिन जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो ये किसी भी एक खिलाड़ी के व्यक्तिगत वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस सिस्टम में आप अकेले कभी नहीं जीत सकते, आपको अपनी टीम के हर एक सदस्य की क्षमताओं पर समान रूप से भरोसा करना ही पड़ता है।
बिल्कुल, इस पूरी डीप डाइव का सबसे बड़ा टेकअवे मेरे लिए यही है कि समानता सिर्फ एक वैचारिक आदर्श नहीं है, इसे किसी भी व्यवस्था में बकायदा डिजाइन किया जा सकता है।
एकदम सही बात है।
अगर एक खेल ऐसे नियम बना सकता है जहां बाहुबल हार जाए, जहां किसी एक स्टार का अहंकार पूरी टीम पर भारी ना पड़ सके और डिफेंडेड शॉट जैसे नियम सबको एक समान धरातल पर ले आए, तो ये खेल के मैदान से बाहर निकलकर हमारी असल जिंदगी के ढांचे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
वो कैसे?
क्या हमारी कॉर्पोरेट दुनिया, हमारे कार्यस्थलों और हमारी संस्थाओं को भी ऐसे ही किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है?
बहुत गहरा सवाल है ये।
एक ऐसा सिस्टम जो ताकतवर को हावी होने से रोके और सहयोग को मजबूरी नहीं बल्कि सफलता की इकलौती शर्त बना दे। असल जिंदगी में वो डिफेंडेड शॉट क्या हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के बाद, मुझे लगता है, लंबे समय तक कोई भी जो इसे सुनेगा उसके जहन में गूंजता रहेगा।
बिल्कुल, सोचने वाली बात है।
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।